नमस्कार। आज सितंबर महीने की पहली तारीख को मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ स्कूल गुलजार होने जा रहे हैं। कोरोना के बाद से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर रोक लगी हुई थी। इन दोनों राज्यों के अलावा कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में कुछ कड़े प्रतिबंधों के साथ बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर स्कूल और प्रशासन ने कड़े रुख अपनाए हैं। इसको देखते हुए बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। वैसे कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है। मंगलवार को लगभग 1.25 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बने। इन सब के बीच नए आने वाले मामले कम नहीं हो रहे हैं। केरल अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में यहां 30,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। पूरे देश में यह संख्या लगभग 43,000 रही। कोरोना के बाद आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अगले कुछ महीनों में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार ने राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों पर विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1947 में जितनी थी, आजादी के बाद कोई विजन विकास का न होने के कारण आम जन की व्यवसाय और रोजगार के लिए कोई भी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म न दिए जाने के कारण लगातार प्रदेश पिछड़ता गया, प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल असर पड़ता गया और अंततः उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और गुंडागर्दी का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे, 5 वर्ष में एवरेज तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था।
योगी आदित्यनाथ पिछली भाजपा सरकार से लेकर अपनी सरकार बनने तक के 14 साल को संक्रमण काल कहते हैं।
2003 और 2017 के बीच में जिस संक्रमण काल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्व और त्यौहार कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कोई भी पर्व और त्यौहार हो, किसी भी मत मजहब संप्रदाय के पर्व और त्यौहार रहे हो, वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। न सरकार की सुविधा मिलती थी, न वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होती थी और न ही सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिलता था।
उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में हुए कल एक कार्यक्रम में इस बारे में बताते हुए कहते हैं,
रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है DRDO, उसके द्वारा यह तय किया है हम लोगों ने। मिसाइल का नाम तो सुना होगा, बड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी।
उत्तर प्रदेश के बाद बात पंजाब की। यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के ही कुछ नेता कर रहे हैं। उनमें से राज्य इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सबसे प्रमुख हैं। दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पार्टी ने मंगलवार को हरीश रावत को फिर से चंडीगढ़ भेजा है। हरीश रावत का कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए खटपट की खबरें सामने आती रहती हैं।
पार्टी के अंदर हमारी भाजपा जैसी पार्टी नहीं है जहां लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है, अपनी बात कहने के लिए फोरम बने हुए हैं।
सिर्फ पंजाब ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर खटपट की खबरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी आ रही हैं। इसको लेकर तंज कसते हुए MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं,
हर जगह पे आप हार रहे हैं, हर जगह पे शिकस्त। पंजाब में लड़ रहे दोनों, वो भी मैं करा रहा हूं क्या है? हर जगह पे इनका कोई, छत्तीसगढ़ में अब इनका चल रहा है। इंटरनल कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है उन्हों।
पंजाब के बाद चर्चा जम्मू कश्मीर की, जहां विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। यहां 50,000 करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं के लिए मंगलवार को पोर्टल शुरू किया गया। इस दौरान यहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की सुधरती स्थिति के बारे में कहा।
सुरक्षा की स्थिति मैं कह सकता हूं कि काफी बेहतर है, और उसका एक प्रमाण कि पिछले 4 वर्षों में जो अधिकतम टूरिस्ट आया था उसके 3 गुना से ज्यादा टूरिस्ट पिछले विंटर्स में आया, और जुलाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर आए हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर शांति, प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। मंगलवार को श्रीनगर में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम में बोलते हुए ओम बिड़ला ने कहा,
खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर अभी तक 300 से ज्यादा माननीय संसद सदस्य यहां पर आए, उन्होंने जनता से चर्चा की है, स्टेट होल्डर से चर्चा की है, कई संस्थाओं से चर्चा की है, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके, और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में एक विश्वास जगाए, भरोसा जगाए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है।
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए हुए इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर चिंता जताते हुए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं,
सबसे बड़ा चैलेंज आपके आ रहा है बॉर्डर से आ रहा है, वो दूर नहीं है, कभी ये मत सोचिए कि वो दूर है। आज उनके पास इतना सामान आ गया है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया है उसका मुकाबला करना, और वो आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पंचायत मेंबर्स का काम जो है वो आसान नहीं है।
अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता अब एक वास्तविकता बन चुकी है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यहाँ भारतीयों की सुरक्षा को लेकर देश में चिंता व्याप्त है। इस बीच भारत और तालिबान के बीच पहली बार औपचारिक बातचीत हुई है। कतर के दोहा में हुए इस बातचीत में भारत ने अपनी चिंताओं से तालिबानी प्रतिनिधि को अवगत करा दिया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।